दिन मंगलवार 14 जुलाई के नमस्कार भारत के साथ मैं हूं अनुराग शर्मा। ग्रीस के कर्ज संकट पर समझौता, लेकिन देश में ही विरोध झेल रहे हैं प्रधानमंत्री सिप्रास। अब भी कितनी पास है ग्रीस के लिए आर्थिक मदद? मध्य एशियाई देशों और रूस की यात्रा से लौटे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी की यात्रा से भारत को क्या मिला?
सेंट्रल एशिया में लोग फील करते हैं कि भारत सेंट्रल एशिया की तरफ इंटरेस्ट नहीं रखता, बल्कि चीन का मुकाबला करना चाहता है या पाकिस्तान को साइडलाइन करना चाहता है।
बात करेंगे इफ्तार की राजनीति पर, ये भी समझेंगे कि क्यों दबाव में है IIT रुड़की। लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास को नए आर्थिक पैकेज के बदले कड़ी शर्तें स्वीकार करने पर देश में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खुद सिप्रास की सिरिज़ा पार्टी के ही कुछ कट्टरपंथी लोगों का कहना है कि यह समझौता ग्रीस के लिए अपमानजनक है। इसकी शर्तों में कहा गया है कि ग्रीस बुधवार तक टैक्स बढ़ाने, पेंशन में कटौती करने और श्रम कानूनों में बदलाव से जुड़े फैसलों को मंजूरी देगा। ग्रीस की संसद से इन बदलावों को मंजूरी मिलने के बाद ही उसे अगले 3 साल के दौरान $95 अरब का तीसरा राहत पैकेज देने पर वार्ता शुरू होगी। अमेरिका का कहना है कि वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चल रही वार्ता में काफी प्रगति हुई है, बावजूद इसके कई मसलों का सुलझना अभी बाकी है। रूस और ब्रिटेन समेत दुनिया की 6 बड़ी ताकतों के साथ ईरान की पिछले 17 दिन से वार्ता चल रही है। समझौते की आखिरी समय सीमा कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट का कहना था, दोनों पक्षों की बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और मेरा मानना है कि पिछले हफ्ते भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। कई जटिल मुद्दे सुलझाए भी गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों पर गतिरोध कायम है। राष्ट्रपति ओबामा का कहना है कि बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलना चाहिए, भले ही देर हो। अमरीकी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट के शब्द। अमेरिका में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बोस्टन पुलिस के कप्तान के बेटे को गिरफ्तार किया है। 23 वर्षीय अलेक्जेंडर सिकोलो पर इस्लामिक स्टेट के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप है और उन्हें गत 4 जुलाई को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों के पास से बम बनाने वाले कुछ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी ने सेना के 3 अंगों के प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को चरमपंथी संगठन बोको हराम से ठीक से न निपट पाने के चलते हटाया गया है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बुहारी ने लोगों से इसका वादा किया था। बोको हराम ने पिछले 10 दिन में ही करीब 220 लोगों की हत्या की है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के आदिवासी बहुल क्योंझर जिले के एक गांव में जादू टोना करने के संदेह में गांव वालों ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल परिवार के 2 अन्य सदस्यों को सोमवार को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने के बाद बड़बिल के पुलिस अधिकारी अजय प्रताप स्वाई सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचे। ओडिशा में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में राज्य में इस तरह की 274 हत्याएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के बयान में कहा गया है कि अमिताभ ठाकुर ने अनुशासनहीनता और हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की। अमिताभ ठाकुर पिछले कुछ दिनों से इसलिए सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर सपा नेता मुलायम सिंह की एक फोन कॉल का ऑडियो सार्वजनिक किया था। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत। मैं हूं अनुराग शर्मा। नमस्कार भारत की शुरुआत उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ग्रीस को राहत पैकेज तो मिल गया है और वो यूरोजोन से बाहर नहीं निकलेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास को अपने देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। उनकी अपनी कैबिनेट के सदस्य उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब उनके सामने नई चुनौती है, चुनौती इस राहत पैकेज की कड़ी शर्तों को संसद से मंजूर करवाने की। BBC संवाददाताओं की भेजी गई रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
सिर्फ 2 दिन, इतना ही वक्त है एलेक्सिस सिप्रास के पास ग्रीस की संसद से उन्हें आर्थिक राहत के पैकेज की शर्तों को मंजूर करवाना है। हालांकि एथेंस लौटने पर उनका जबरदस्त विरोध हुआ और ग्रीस के ज्यादातर लोग भी इस समझौते से बहुत खुश नहीं दिखते। पेनेजियोटिस नाम के ये व्यक्ति कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि ग्रीस के लोग अपमान नहीं सहेंगे, एकजुट रहेंगे।
απογοητευμένη. Ξεκινήσανε δυναμικά, είχαμε μια ελπίδα έστω.
Κριστίνα Νάμκη Μαϊλά Κακένα, έχει και εγώ πολύ निराश है. शुरुआत में उम्मीद दिखाई भी दी थी, हालांकि इस बात के लिए वे लोग तैयार थे कि कुछ बुरा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह तो बहुत बुरा हुआ. 86 अरब यूरो के राहत पैकेज के लिए ग्रीस को टैक्स सुधार करने होंगे, सबसे गरीब पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन में कटौती करनी होगी, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाएगी और बड़े पैमाने पर निजीकरण भी करना होगा. समझौते में ग्रीस का कर्ज कम करने का कोई भी वादा नहीं किया गया है. यहां तक कि यूरोजोन के बाकी देशों ने ग्रीस के 1 यूरो के भी कर्ज की जिम्मेदारी नहीं ली है. सब कुछ ग्रीस की संसद में प्रस्ताव पास होने पर ही निर्भर है. असल में सिप्रास की पार्टी जनवरी में ये वादा करके सत्ता में आई थी कि वो खर्चों में कटौती के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन उसे वही करना पड़ रहा है. अब सिप्रास कह रहे हैं कि बातचीत की शर्तों में उन्होंने ढील हासिल की है. ग्रीस को कर्ज मुख्य तौर पर यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म यानी ESM से मिलेगा. ये यूरोप का रेस्क्यू फंड है, लेकिन ESM के प्रमुख क्लॉस रेगलिंग का कहना है कि ग्रीस को कर्ज मिलने में भी अभी वक्त लगेगा.
After the Greek Parliament acts on Wednesday, and when national procedures in our member states.
रेगलिंग कह रहे थे कि ग्रीस की संसद बुधवार को मंजूरी देगी और हफ्ते के अंत तक दूसरे देशों में भी जरूरी प्रक्रिया पूरी होगी. फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रस्ताव पर विचार करेगा, उसके बाद शर्तों पर बातचीत होगी, फिर मुझे कहा जाएगा कि मैं समझौते का प्रस्ताव तैयार करूं, और फिर दोबारा बातचीत होगी. तो कुल मिलाकर ग्रीस के लिए समय कठिन है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है. ये थे ESM के प्रमुख क्लॉस रेगलिंग के शब्द. ग्रीस के लिए एक एक पल इसलिए भी कीमती है क्योंकि उसके बैंक 2 हफ्ते से बंद हैं और उनके बुधवार से पहले खुलने की संभावना भी नहीं है. लोग एक बार में ATM से सिर्फ 60 यूरो ही निकाल सकते हैं. फिर ग्रीस को 20 जुलाई तक 7 अरब यूरो की एक किस्त का भी भुगतान करना है, जिसके लिए उसे कम अवधि में आर्थिक मदद की ज़रूरत है. जाहिर है ग्रीस के लिए इस आर्थिक संकट से निकलने का रास्ता मुश्किलों से होकर जाता है. क्या ग्रीस ये संकट टाल पाएगा? इस बात का पता बुधवार रात तक ही चल पाएगा.
तो यूरोजोन के देशों ने कड़वी दवाई की तरह पेश किया है ग्रीस के सामने आर्थिक राहत पैकेज को. बात नरेंद्र मोदी की मध्य एशिया यात्रा की. लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के बाद इसे लुक नॉर्थ कहकर पेश किया जा रहा है. ये यात्रा भारत में ज्यादा चर्चा में रही मोदी और शरीफ की मुलाकात की वजह से जो युवा में हुई थी, लेकिन इस दौरान मोदी ने उन देशों को भी छुआ है जो भारत के बेहद करीब हैं, लेकिन जिनसे अब तक दूरी सी बनी हुई थी. क्या मिला मोदी की इस यात्रा से भारत को? हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की लंदन में मौजूद मध्य एशिया और दक्षिण एशिया मामलों के जानकार नजम अब्बास से और यही सवाल पूछा.
इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो डिप्लोमेटिक गेन्स हैं, कि दौरे का अहम एक लक्ष्य ये था कि सेंट्रल एशिया में जो भारत की मौजूदगी है और उसकी दिलचस्पी है वहाँ के बड़े बड़े इकोनॉमिक मंसूब प्रोजेक्ट्स में, उसको बड़े अंदाज में देखा जाए, जाना जाए और माना जाए, और सेंट्रल एशिया में भारत को जो है वो एक ऐसी एंट्री दी जाए ताकि भारत आइंदा वहाँ अपने लिए व्यापार में और तेल और गैस के शोबों में अपने लिए एक अहम जगह बना सके. तो इसके लिए जो है इस दौरे में कई अहम एग्रीमेंट साइन हुए हैं. इसी तरीके से एनर्जी में भारत ने अपनी तेल और गैस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान के साथ अहम एग्रीमेंट साइन किए हैं. इसी तरीके से जब रूस गए थे उफा में, रूस के साथ तेल की सप्लाई के लिए एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है. एटमी ताकत से बिजली बनाने के लिए जो भारत की ज़रूरत है वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से इंपोर्ट करने की बात हुई है. कजाकिस्तान से चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए रॉकेट भेजने की बात हुई है, जो 2016 में जो है वो मिशन तैयार होगा. सेंट्रल एशिया की तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनको कुछ ख़तरों का सामना है जो भारत को भी है, और उसके लिए एग्रीमेंट्स हुए हैं कि क्या क्या कदम उठाए जाएं, जैसे अफगानिस्तान में जंग ना फैले और जो दाइश के लड़ाका ग्रोह इराक और सीरिया में इस वक्त प्रॉब्लम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ना आ जाएं, इसके लिए दोनों तरफों के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट साइन हुए.
ये तो सब अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में. कहीं कुछ हासिल करने से भारत चूक गया इस दौरे के जरिए, कुछ लगता है आपको ऐसा?
सेंट्रल एशिया में एक ये है कि तिजारत का जो हिस्सा सेंट्रल एशिया के साथ भारत का है वो उनको निराश करता है, क्योंकि आप कल्चर की पुराने रिश्तों को याद दिलाकर इस कमी को दूर नहीं कर सकते. व्यापारी एग्रीमेंट्स में जो तेजी दिखाने में कमी रही है उसके कारण कई बढ़िया मौके भारत के हाथ नहीं आ पाए, اور اس دور میں دوسرے جو ملک ہیں مثلا چین ہے، روس ہے، ایران ہے اور ترکی ہے، اس نے کئی جو ہے وہ اچھے پرائم ڈیلز جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں لیے ہیں، کس طریقے سے اس کو مضبوط بھاگیداری میں اور سگائی میں بدلا جائے، اس کے لیے جو ہے بھارت کو زیادہ لچک دکھانے کی آئندہ دنوں میں ضرورت پڑے گی۔ سینٹرل ایشیا میں لوگ فیل کرتے ہیں کہ بھارت سینٹرل ایشیا کی طرف انٹرسٹ نہیں رکھتا بلکہ چین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کو سائیڈ لائن کرنا چاہتا ہے، تو اس زیرو سم گیم میں بعض اوقات وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا ہمیں قزاقستان میں نظر آیا جہاں پر انہوں نے کیسپین سی کے بارے میں کہا کہ ہم کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم سمندر کے نیچے سے جو ہے وہ تیل نکالیں گے، لیکن اس معاہدے کو پورا کرنے میں اتنی دیر ہوئی کہ قزاقستان کی حکومت نے وہ حصہ بھارت کی جگہ چین کو دے دیا۔
تو یہ تھے نجم عباس جو کہہ رہے تھے کہ بھارت کو مدھیہ ایشیا میں تھوڑا لچیلا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ وینا میں بھی بات چیت چل رہی ہے ایران کی، ایران کو لے کر، پرمانو سمجھوتے کو لے کر۔ اگر کوئی بات وہاں ہوتی ہے، اگر کوئی اپڈیٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو لے کر چلیں گے۔ اب بات بھارت کی گھریلو راجنیتی کی۔ اتر پردیش کے آئی پی ایس افسر امیتابھ ٹھاکر کو اتر پردیش سرکار نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ ان پر آروپ لگایا گیا ہے انوشاسن ہینتا اور ہائی کورٹ کے نردیشوں کی اندیکھی کا۔ حالانکہ امیتابھ ٹھاکر پچھلے دنوں سرخیوں میں رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے ادھیکش ملائم سنگھ یادو پر انہوں نے آروپ لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملائم سنگھ یادو نے انہیں دھمکایا ہے۔ سمیراتمج مشر نے بات کی امیتابھ ٹھاکر سے۔
میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے دور دور تک کسی آچرن نیماولی کا الگھن نہیں کیا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ یدپی میں نے دیکھا ہے کہ جو رپورٹ بھیجی گئی میڈیا رپورٹ، اس میں شکایتوں کا لمبا چوڑا پلندہ بتایا گیا ہے۔ اس میں ان کو پڑھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھا ہے اور میں اسے کسی بھی پرکار سے غلط نہیں مانتا۔
تو اب آپ کا کیا ہوگا اگلا قدم؟ آپ کچھ اپنی صفائی دیں گے سرکار کو یا پھر کیا کہیں گے؟
نہیں، میں سرکار کو بھی اپنی صفائی دوں گا، ساتھ ہی ساتھ اتر پردیش سرکار کو بھی صفائی دوں گا، ساتھ ہی ساتھ میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ میری نلمبن کے پورو مجھے ایک بار بھی کارن بتاؤ نوٹس نہیں دیا گیا، مجھ سے پوچھا نہیں گیا کہ ان باتوں میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے، بنا اوسر دیے مجھے نلمبن کیا گیا۔ تو میں اس تتھیہ کو بھی شاسن سے نویدن کروں گا۔
جی، تو یہ جو آپ کو کارن بتایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ کے نردیشوں کی اوہیلنا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
میں نے کسی نردیش کی اوہیلنا نہیں کی ہے، میں نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو کہ مجھے ایک آئی پی ایس افسر کے روپ میں، میں نے وہی کیا ہے جو مجھے اس دیش کے ناگرک کے روپ میں کرنا چاہیے۔ تو جنہت کے کاریہ کرنا ہمارے لیے اب ہمارا دائتو بتایا گیا ہے، میں نے ماتر وہی کیا ہے۔
امیتابھ جی، ابھی سوموار کو یہ مکھیہ منتری اکھلیش یادو کا بھی یہ بیان آیا کہ نیتا جی کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں، مجھے بھی کئی بار سمجھاتے ہیں، اور اگر سمجھا دیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے ملائم سنگھ جی کی بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟
جی، نشچت روپ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پرکار سے سمجھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، میں اسے کبھی بھی سمجھانا نہیں مان سکتا۔ وہ اسپشٹ روپ سے دھمکی تھی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ اگر تم نے دوبارہ اس طرح سے کسی کی شکایت کی تو تمہارے خلاف اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے، خاص کر کے تب جب کہ جس وشے کی چرچا ہو رہی تھی وہ شری گایتری پرجاپتی کے بھرشٹاچار کا معاملہ تھا۔
تو یہ جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے آپ کو نلمبت کرنے کا، آپ کے نلمبن کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے آپ سمجھ نہیں پائے، اسی وجہ سے اٹھایا گیا ہے؟
نشچت روپ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میں نے شری ملائم سنگھ کے خلاف ٹیپ سارجنک کیا تھا تو اس کے بعد سے مجھے پورن جانکاری تھی کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، اور میں اس جو ملا ہے مجھے یہ نلمبن، میں اس سے اسے کوئی بہت بڑی بات نہیں مان رہا، کیونکہ جو ریپ کے فرضی آروپ سے میں اسے نشچت روپ سے کم ہی مان رہا ہوں۔
امیتابھ ٹھاکر کہہ رہے تھے کہ نہ سمجھ پانے کی وجہ سے انہیں سسپینڈ کیا گیا ہے۔ آئی آئی ٹی روڑکی نے پچھلے دنوں خراب نتیجوں کی وجہ سے 73 چھاتروں کو نکال دیا۔ اب یہ معاملہ دھیرے دھیرے گرماتا جا رہا ہے۔ سنستھان کے فیصلے کے خلاف چھاتروں نے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا ہے۔ اس بیچ کچھ چھاتر ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے ہیں۔ پوری رپورٹ کے ساتھ دہرادون سے شیو جوشی۔
آئی آئی ٹی روڑکی میں نئے داخلوں کے بیچ ان دنوں زوردار دھرنا پردرشن بھی چل رہا ہے۔ संस्थान ने 73 छात्रों को संस्थान से क्या निकाला कि आईआईटी और शैक्षणिक गलियारों में हंगामा मच गया। बीटेक के इन छात्रों का पहले वर्ष के दोनों ही सेमेस्टर की परीक्षा में मानकों से कम प्रदर्शन रहा था और इनके औसत 5 CGPA से कम अंक थे। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए संस्थान की सीनेट ने 8 जून को हुई एक बैठक के बाद इन्हें संस्थान से निकालने का निर्देश जारी कर दिया। छात्रों की दया अपील को खारिज करते हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में भी सीनेट के ही फैसले पर मुहर लगाई गई। निकाले गए छात्रों में से एक अनुराग दुखी मन से कहते हैं,
मैंने अप्लाई की थी पर अब हो नहीं पाया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं पढ़ाई की थी, अब वो कई बार नहीं हो पाता है, कोशिश तो काफी की लेकिन अब नहीं हो पाया, पॉइंट आउट नहीं कर सकता मैं।
निकाले गए छात्रों में से 50% से ज्यादा छात्र आरक्षित वर्ग से हैं। छात्रों को इस तरह से संस्थान से निकाले जाने पर उनके अभिभावकों में भारी गुस्सा है। उनमें से एक दलजीत सिंह कहते हैं,
ऐसा बिल्कुल बच्चों के हित में नहीं है और हम तो कहेंगे ये इंस्टीट्यूशन के हित में भी नहीं है। इस तरह का फैसले अगर लिए गए हैं तो आने वाले दिनों में बच्चे यहाँ आने से डरेंगे।
IIT रुड़की का दावा है कि छात्रों को निकालने का फैसला संस्थान के नियमों के तहत और 100 से अधिक प्रोफेसरों की रजामंदी से किया गया है। IIT रुड़की के रजिस्ट्रार प्रशांत गर्ग का कहना है कि 73 छात्रों के बारे में संस्थान अपने फैसले पर कायम है।
ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, दिस इज नॉट लाइक कि इसमें कोई स्टेटमेंट रिलीज करना है, फॉर्मल स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट अगर होता है तो हम लोग अलग से वो जारी कर देते हैं। इसमें 3 दिन पहले जो डिसीजन हुआ है वो आज भी वही इंस्टीट्यूट उस पर कायम है।
संस्थान में पिछले साल ही ये नियम बनाया गया था कि 2 सेमेस्टरों में खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों को निकाल दिया जाएगा। इस सिलसिले में दाखिले के समय अभिभावकों से भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे, लेकिन IIT दिल्ली के ऐसे ही एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था और उसका कहना था कि छात्रों का प्रदर्शन सुधारने की जिम्मेदारी संस्थान की होनी चाहिए। ये पहला अवसर है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी IIT से छात्रों को बाहर निकाला गया है। BBC को सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार इस मामले के कोर्ट जाने को लेकर IIT रुड़की के आला अधिकारी भी परेशान हैं और संभवतः दोबारा बैठक भी बुलाई जा सकती है। शिव जोशी, BBC देहरादून।
ये थे शिव जोशी। भारत में रमजान के महीने में एक अलग ही माहौल होता है। ईद से पहले करीब करीब हर राजनीतिक दल इफ्तार पार्टियां रखता है। कई दफा मीडिया ईद की सेवइयों से पहले इन दावतों और सियासत के महीन सूत्रों में संबंध तलाशता है। क्या नाता है इफ्तार की दावतों और सियासत का, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने बात की रेहान फजल से।
तो रेहान साहब, कल सोनिया गांधी ने इफ्तार की दावत दी, ढेर सारे नेतागण आए हुए थे, हालांकि लालू यादव वहाँ मौजूद नहीं थे, ममता बनर्जी भी मौजूद नहीं थी, लेकिन आखिर इतनी सारी अहमियत क्यों दी जाती है मीडिया में?
देखिए, ये एक तरह से राजनीतिक मंच होता है जहाँ लोगों को बुलाया जाता है, राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान होता है, सब चीज़ें बड़ी अनौपचारिक ढंग से होती हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प इतिहास है इफ्तार पार्टियों का। अगर हम पहले जाएं तो जवाहरलाल नेहरू इफ्तार पार्टियां दिया करते थे और ख़ास तौर से जो बुद्धिजीवी होते थे, मुस्लिम बुद्धिजीवी और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते थे या मंत्री होते थे उनके मुसलमान, उनको वो आमंत्रित करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो इफ्तार पार्टी होती थी ये उनके निवास स्थान 3 पर नहीं होती थी, बल्कि वो कांग्रेस मुख्यालय 7 जंतर मंतर रोड पर,
जो उस वक्त जंतर रोड से पहले
जी, तो वहां पर इस तरह की पार्टी का आयोजन होता था। लेकिन अगर हम उसके आगे चलें तो जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उनके जमाने में इफ्तार पार्टी बिल्कुल बंद हो गई,
लेकिन उनका वक्फा भी बहुत कम था।
लेकिन फिर भी 2 साल वो रहे, लेकिन 2 साल उन्होंने कोई इफ्तार पार्टी नहीं दी। इसके बाद इसको रिवाइव किया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा गुना ने। 1974 में पहली बार लखनऊ में उन्होंने तमाम कई जिसे कहा जाए मशहूर मुसलमानों को अपने यहाँ बुलाया, और बहुगुना पास मास्टर थे इस तरह के सिंबॉलिक जेस्चर करने में। अगर आपको याद हो कि अगर वो स्पीच दे रहे हों और एकदम से अजान की आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो वो अपनी स्पीच रोक देते थे और सर पर टोपी रख लेते, टोपी तो वैसे लगाते थे लेकिन वो इंसिस्ट करते थे कि सर पर टोपी रख ली जाए।
केजरीवाल ने वो बनारस चुनाव प्रचार के दौरान भी किया कि जब अजान की आवाज हुई तो वो रुक गए। जी,
तो फिर बहुगुणा के बाद ये क्यों लिया मिसेस गांधी ने और
इंदिरा गांधी ने।
लेकिन शुरू में वो सिर्फ मुस्लिम देशों के राजदूतों को अपने यहाँ बुलाती थी, वो एक तरह से राजनीतिक इफ्तार पार्टी नहीं होती थी। जितने डिप्लोमैट्स होते थे वेस्टर्न कंट्रीज के वो वहाँ आया करते थे। इंदिरा गांधी के हारने के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, वो भी पास मास्टर थे इसमें, और उन्होंने भी इफ्तार पार्टी देना शुरू किया जनता पार्टी के मुख्यालय में। लेकिन एक खास बात यह होती थी कि उस इफ्तार पार्टी में मोरारजी देसाई कभी भी नहीं गए। मोरारजी देसाई को ये बात
प्रोटेस्ट मतलब कोई
विरोध नहीं, वो फिर उनको लगता था कि ये मतलब सिर्फ एक तरह से सिंबॉलिक चीज़ है और इसका कोई माने नहीं है, इसलिए वो उनको बुलाया जाता था लेकिन वो कभी नहीं जाते थे। 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई तब उन्होंने एक तरह से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, दावतें होने लगीं, बहुत अच्छे खाने वहाँ सर्व किए जाने लगे और न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम हिंदू हूज हू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वो वहाँ पर आते थे और ये एक बड़ा भारी इवेंट होता था। और फिर उसके बाद से ये एक तरह से ट्रेडिशन हो गई, करीब करीब हर प्रधानमंत्री ने इस तरह के इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पार्टी का आयोजन किया। और अगर हम गलत नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी मुख्यालय पर,
जी मैं खुद उसमें शरीक हो चुका हूँ एक बार,
इस पार्टी का इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। और वो शायद पहला मौका था जहाँ मुसलमानों को तरजीह दी जाती थी ब्राह्मणों से ज़्यादा। तो लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि नरेंद्र मोदी को इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है अभी तक।
पिछले साल भी अब तो वक्त भी नहीं है, दो चार दिन बचे हैं।
शुरू में इस तरह की खबरें आई थी कि वो कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे, लेकिन बाकायदा इसका डिनायल आया बाद में।
जी,
तो
हालांकि आरएसएस समर्थित जो एक मंच है, इंद्रेश जिसके प्रमुख हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक इफ्तार पार्टी दी थी और उसमें वो कुछ मुसलमानों को बुलाया गया था। लेकिन ये 90 के दशक में ये जो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये हरे गमछे और टोपी, ये एक पिछले इफ्तार के मुकाबले ये ख़ास तरह की सिम्बोलिज़म थी।
तो इस तरह की एक ख़ास तरह के, जिसे कहा जाए वोट बैंक को कैटर करने की कोशिश की, साहब स्कार्फ पहन लिया या अंगूठा
लगा ली,
टोपी लगा ली और नमाज वहाँ पर उसका आयोजन कर दिया गया और अच्छे पकवान खिला दिए गए। तो इस तरह की कोशिश की जाती है और इसके ज़रिए ये बताने की कोशिश होती है कि हम आपका ख्याल रखते हैं।
मीठी ईद से पहले मीठी मीठी बातों का क्या जरिया बन गया है इफ्तार। समाचार पत्रों के साथ आ गए हैं समीर आत्मज मिश्र। समीर, क्या है सुर्खियां?
बिल्कुल अनुराग, जैसा कि अभी बड़ा दिलचस्प वाक्या, दिलचस्प बातें सुनी हमने इफ्तार पार्टी के बारे में रेहान फजल और इकबाल अहमद की बातचीत में। आज के अखबारों में भी मैं देख रहा हूँ कि इफ्तार दावत जो है वो छाई हुई है। सोनिया गांधी की कल इफ्तार पार्टी थी, ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है ये खबर। जनसत्ता ने लिखा है, सोनिया की इफ्तार पार्टी में जुटे विपक्षी दल, नीतीश आए मगर नहीं आए मुलायम। अमर उजाला कहता है, सोनिया की इफ्तार पार्टी से गायब रहे पुराने दोस्त। तो लगभग सभी अखबारों में ये खबर छाई हुई है। उसके अलावा ज़्यादातर अखबारों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज़ के बयान को प्रमुखता से छापा है। अजीज़ ने कल कहा था कि कश्मीर मुद्दे के बिना भारत से बातचीत नहीं होगी। दैनिक हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, पाक की पलटी, कश्मीर के बिना भारत से बातचीत नहीं। जनसत्ता लिखता है कि पाकिस्तान ने मुंबई हमलों की जांच में भारत से और सबूत मांगे हैं। अखबार का संपादकीय भी इसी पर है, जिसमें कहा गया है कि उफा में बातचीत से कुछ उम्मीद जगी थी लेकिन पाकिस्तान ने फिर भारत को झटका दे दिया। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कश्मीर पर पलटा पाक, कुछ और पैंतरे भी दिखाए। द हिंदू अखबार ने भी इसी खबर को अपनी लीड बनाया हुआ है, बैक इन पाक, अजीज इंसिस्ट्स दैट कश्मीर टॉप्स लिस्ट ऑफ इश्यूज़। तो लगभग सभी ज़्यादातर अखबारों में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। नई दुनिया अखबार की एक खबर है कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भाजपा की बैठक में कहा कि अच्छे दिन के लिए 5 नहीं 25 साल चाहिए। द तो
बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब अच्छे दिन आना है।
हाँ, और अमित शाह की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने कहा था कि
जी
जो मौजूदा सांसदों की संख्या उससे काम नहीं चलेगा, 300 के ऊपर
सांसदों की बात की थी।
अब अच्छे दिन के लिए 25 साल चाहिए, यानी अच्छे दिन आए नहीं इसका मतलब। और मुझे लगता है कि अब समय की कमी है। मैं जनसत्ता के कार्टून का जिक्र अंत में करना चाहूँगा। उसमें कांग्रेस पार्टी का एक बयान छपा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य बनती है तो दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस का खर्चा कैसे निकालेगी। तो नीचे एक पुलिस के जवान हैं और वो कह रहे हैं कि पुलिस की मत सोचो, अपना खर्चा खुद ही निकालेगी।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर। अब एक नज़र उन खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज नज़र रहेगी।
आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई लोढ़ा कमेटी आज फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को यह कमेटी बनाई थी। कोर्ट की बनाई मुद्गल कमेटी ने सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैपन और रॉयल्स के मालिकों में से एक और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को सट्टेबाजी का दोषी पाया था। कोर्ट ने मैपन, कुंद्रा और उनकी टीमों के लिए सजा तय करने का काम इस कमेटी पर छोड़ा था। मणिपुर में इनर लाइन परमिट विवाद को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज हड़ताल बुलाई है। ये एक हफ्ते में दूसरी हड़ताल है। नासिक में आज से महाकुंभ शुरू हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन 12 साल में होता है। भारत का दूर संचार आयोग आज ब्रॉडबैंड को लेकर ट्राई के सुझावों पर विचार करेगा। ट्राई ने जो सुझाव दिए हैं उन पर अमल होने पर लैंडलाइन से होने वाली कॉल की दर में गिरावट आ सकती है।
और अब खेल की खबरों के साथ आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने बेंगलोर में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल भारतीय महिला टीम को 13 गेंद शेष रहते 6 विकेट से मात दी। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 137 रनों का लक्ष्य था जो उसने विकेटकीपर बल्लेबाज रशील प्रिस्ट के 60 रनों की मदद से 17.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 136 रन बनाए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की इस 2020 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। उधर भारत और जिम्बाब्वे के बीच मौजूदा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छा समाचार नहीं है क्योंकि फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज अंबाती रायडू चोट के कारण जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि अंबाती रायडू ने पहले एक दिवसीय मैच में नाबाद 124 रनों की शतकीय पारी खेली तो दूसरे एक दिवसीय मैच में भी 41 रन बनाए। उनकी जगह संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं आज से चीन ताइपे बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ियों के बीच भारतीय खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाएंगे। पुरुष एकल वर्ग में भारत के के श्रीकांत को तीसरी वरीयता दी गई है, चीन के चेन लॉन्ग को पहली और डेनमार्क के यानो योर्गेनसन को तीसरी वरीयता दी गई है। चौथी वरीयता हासिल चीन के लिंडेन भी किसी से कम नहीं है। महिला एकल वर्ग में भारत की पीवी सिंधु अपना दावा पेश करेंगी। हालांकि भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगी। थाईलैंड की रथचानोक इंतनॉन को पहली, चीन की जुई रुई ली को दूसरी और चीन ताइपे की ताई जू यिंग को तीसरी वरीयता दी गई है। महिला युगल वर्ग में भारत की दो जोड़ियां इस टूर्नामेंट में हैं। पिछले दिनों कनाडा ओपन में खिताब जीतने वाली ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी के अलावा भारत की अपर्णा बालन और प्रजक्ता सावंत अपना दमखम दिखाएंगी। पुरुष युगल वर्ग में भारत के अक्षय दिवालकर और प्रणय एस चोपड़ा की जोड़ी अपना दावा पेश करेगी।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास को नए आर्थिक पैकेज के बदले कड़ी शर्तें स्वीकार करने पर देश में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चल रही वार्ता में काफी प्रगति हुई है, बावजूद इसके कई मसलों का सुलझना बाकी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया है। अफ्रीकी देश सियेरा लियोन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घातक इबोला वायरस के नए मामले सामने आने लगे हैं। ओडिशा के आदिवासी बहुल क्योंझर जिले के गांव में जादू टोना करने के संदेह में गांव वालों ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही पहली सभा नमस्कार भारत खत्म हुई। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। एक घंटे बाद विश्व भारती में मुलाकात होगी। नमस्कार।